तस्मैश्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवत्रिजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय राधय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाठ पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णु पाठ किस्मत भक्ति पर ज्ञान के सदस्य महाराज श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि दे रहा हूँ। तत्पश्चात दंडी पाठगण ब्रह्मचारी गण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी अन्य सज्जन महाराज एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप का भ्राता हिरण्याक्ष मारा गया। उसके अंग भंग को जोड़कर जो टूट गए हैं काट दिए गए हैं हाथ पर एकत्र करके राजभवन में लाया गया और सफेद चादर उसके ऊपर उठा दिया गया और सभी लोग रो रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं। हिरण्यकश्यपु खुद बड़ा भारी शास्त्रविद था, वेद उपनिषद शास्त्र जानता था किंतु पालन नहीं करता मौखिक रूप में। राजे रोते क्यों हो भाई? रोने की कोई जरूरत नहीं। यदि संसार विश्व भर के लोग रोए हजार वर्षों तक तो वो लौट करके तो आएगा नहीं, तो रोने की क्या जरूरत है? वो और भी ऐसी बात है, किस लिए रोते हो? किसी ने बतलाया ये मर गए। मर गए कहां? मर गए, गए तो कहीं नहीं नहीं है। चादर उठा दो बातचीत करो, गए तो नहीं है। नहीं, ये चले गए। गए कहां? शरीर तो जिस शरीर से तुम बेटा कहते थे, पिता कहते थे, पति कहती थी, वो शरीर तुम्हारे सामने ये पड़ा हुआ है, इसे बातचीत कर लो। कि नहीं, उसकी आत्मा चली गई। तो वो नहीं गए हैं, आत्मा गई है। तो वो यदि हैं और उनकी आत्मा चली गया है तो आत्मा को चली जाने दो। हाथ कट गया तो एक हाथ चला गया तो अभी तो वो बोलता है, तो ये तो है यहां, समझो खूब अच्छी तरह से। या नहीं, उनके अंदर में जो आत्मा थी वो चली गई। तो वो आत्मा थे न शरीर थे? कौन थे? यदि शरीर थे तो यहां पर सोए हुए हैं, बातचीत कर लो। और यदि आत्मा थे तो वो शरीर से अलग थे। अच्छा, वो आत्मा जो चली गई, प्राण चला गया, उसको कभी देखा? कभी देखा? गोरा था या काला था? लंबा चौड़ा कितना था? कभी देखा? कभी भेद हुई? तो नहीं। तो फिर उसके लिए क्या रोते हो? जिसके लिए देखा था, जिसे संबंध था, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और जो आत्मा चली गई, उसको कभी नहीं देखा, उसके लिए रोते हो? तात्पर्य इसका यह है कि हम यह शरीर नहीं है, इस चीज को समझिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति के विचार, वेद उपनिषद इत्यादि में ये सब बातें थी। हम जिसको शरीर मान करके इसके सुख के लिए, इसके अंदर में मन के सुख के लिए जो कुछ करते हैं वो शरीर यहीं रह जाता। शरीर से कमाया हुआ रुपया पैसा धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार बाल बगीचे पशु पद ओहदे सभी यही इसी जगत में रह जाते हैं, कुछ भी नहीं जाते। एक पैसा दमड़ी लेकर के इस जगत से नहीं जाना है। अनादि काल से सृष्टि के प्रारंभ से ही अभी जो ब्रह्मा है, ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मा बीत गए हैं, सृष्टि का आदि अंत नहीं है। तब से हम हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, किंतु कोई सुखी नहीं है। अरे मैं तो बहुत सुखी हूं, धनी हूं, मानी हूं, हमारे बेटे योग्य हैं, मैं प्रधानमंत्री हूं, यहां का कोई हूं, नेता हूं, एक दिन बूढ़ा होगा कि नहीं, बीमारी है कि नहीं, और एक दिन शरीर को छोड़ेगा कि नहीं, ये बंधु बांधव को एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा, कहां जाएगा, ये भी ठीक नहीं। इसलिए अनंत काल से हम जन्म मरण के चक्कर में चल रहे हैं, इसी का नाम है भवरोग। यह है भवरोग। भव माने संसार, आने जाने का। पहली बार हम मनुष्य होकर के नहीं आए हैं, करोड़ों करोड़ बार स्त्री पुरुष, कभी गंधर्व, कभी ब्रह्मा, कभी कुछ, कभी कुछ हुए हैं, कभी कीट पतंग हुए हैं, कभी सुकर कुकर गधे बंदर हुए हैं। अब इसके बाद में जैसा कर्म होगा वैसा फिर जाना पड़ेगा 84 लाख में, ये झूठी बात नहीं है, अवश्य होगा। इसलिए भौरों के छुटकारा के लिए शास्त्र में आता है, आप लोग पालन करेंगे कि जीवन में भी सुखी रहेंगे और लोक में भी सुखी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ध्यान लगाया, संसार में जीव लोग इतने बड़े दुखी हैं, क्यों क्यों दुखी, विचार करके देखा ये भगवान के अंश हैं। जीव जो है ममई वंशो जीव लोके जीव भूतेश, हम जो जीव हैं शरीर नहीं, शरीर तो हाड़ मांस रक्त और पैखाना पेशाब की थैली है। भगवान ने सुंदर चमड़ा ऊपर से देकर इसे सवार रखा है, किंतु इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए तो क्या रहेगा, कुछ नहीं, और किसी को कोई प्यार नहीं करेगा। वो तो बात रहे, एक यहाँ या कहीं पर सफेद दाग हो जाए ना तो विवाह नहीं होगा, लड़कियों का तो गया जो कूड़ हो। इसलिए ब्रह्मा जी चिंता कर रहे हैं, जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। स्वरूप से भगवान जैसे आनंदमय है, जीव भी आनंदमय है, हम इस जगत की कोई वस्तु नहीं है, भगवान के अंश। हम भगवान की सेवा में तन्मय हो रहे थे और किसी विशेष कारण से भगवान को भूल गए, उस सेवा को भूल गए और माया ने हमें दूर फेंक दिया इस जगत में और तन भर के चक्र में लगा। हमारे दुखों का यही मूल कारण है, उस भगवान को भूल गए जिसके साथ में हम आनंद से सेवा करते हैं। फिर उस अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे, उसी भगवान को याद करके कीर्तन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उनको याद करेंगे उनके वैष्णव के संग, तो हम फिर उनको स्मरण करके और फिर इस संसार भाव चक्र से छूट सकते। इसी का नाम साधु संग इत्यादि कहा गया। जो ये भक्ति कला, भगवान की सेवा का नाम भक्ति है। भक्ति कहते हैं किसको? ईश्वरे परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के चरणों में परम अनुराग हो। और भी बहुत सी कही गई किंतु श्री रूप गोस्वामी ने चेतन महाप्रभु के परिचय में सब परिभाषाओं को केंद्रीभूत कर, क्रोड़ीभूत कर एक भक्ति की परिभाषा डेफिनेशन दिया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान परमाध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। इसका तात्पर्य संक्षेप में बताया, जब अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जब किसी रियलाइज सो आप अनुभवकारी गुरु या वैष्णव के अनुगमन में कैलव धारावत अविच्छिन्न गति से तन मन वचन की सारी चेष्टाएं और इसके अतिरिक्त भावनाएं, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा हो तो वो भक्ति कहलाती है। किंतु यदि उसमें भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न हो और वो भक्ति ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जप तप से ढकी हुई न हो तो उत्तमा भक्ति हो। ध्रुव जी की भक्ति है भगवान का मंत्र जप के भगवान का दर्शन पाया, किंतु थोड़ी सी गलती उसमें है, अपने पिताजी का राज्य पाने के लिए ये भगवान की भक्ति, उनको राज्य मिल गया बस हो गया, इसलिए भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। ज्ञान कर्म जो की सहायता से भक्ति होगी ये भी नहीं, भक्ति स्वतंत्र अवलंबनाना भक्ति स्वतंत्र। इस यही भक्ति का एक क्रम है, संक्षेप में मैं बतलाता हूं वो क्रम क्या है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा ततो रुचि आसक्ति भाव। इसके बाद में क्रिया, ये इसके क्रम है। भाव के बाद में इसका कोई साधन नहीं है, भाव का कुछ साधन है। अच्छा साधन किसको कहते हैं पहले समझो, हम जो कुछ करते हैं वो सब साधन नहीं है। कृति साध्य भवे साध्य भावा ससाधन विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटन विधि साधन। जब साधन भक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, जैसे अब नारी नाम कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? जड़ीय मुख जीवा भगवान का चिंतन कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? जड़ीय मन के द्वारा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं जड़ीय पैर के द्वारा कर रहे हैं, अभी हमारा सब कुछ जड़ है। किंतु भाव को प्राप्त करने के लिए यदि इन इंद्रियों की सेवाओं के द्वारा भगवान की सेवा की जाए, जिससे कि भाव की प्राप्ति हो तो वो साधन होगा। भाव उद्देश्य नहीं है तो वो साधन साधन नहीं। भाव के इसको कहते हैं, बहुत चीजें इसमें सीखनी है भक्ति। भाव किसको कहते हैं? प्रेम सूर्यांश साम्य भात रुचि चित्तम आशीन्य कृदा सौभाव मुच्य
शुद्ध सत्व विशेष आत्मा
शुद्ध सत्व विशेष पहले सम शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व का किसे कहते हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले श्रद्धा से समझना होगा पहले आप श्रद्धा ही समझाएं तब फिर इसको श्रद्धा किसको कहते हैं श्रद्धा दो प्रकार की है एक लौकिक एक पारमार्थिक लौकिक श्रद्धा और पारमार्थिक किसी को प्रणाम किया किसी को आदर दिया ये लौकिक श्रद्धा पारमार्थिक श्रद्धा नहीं श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय है किसने भक्ति पहले सच कर ऐसा विश्वास दृढ़ हो कि कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन का सब कुछ करना सफल कृष्ण भक्ति करने से ही हमारा जीवन सफल ऐसा सुदृढ़ विश्वास भक्ति क्यों अन्य उपाय वर्जम श्रद्धा उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष और उपायों को छोड़ करके भक्ति को जो लाए जो क्रिया वो श्रद्धा और एक चीज समझिए श्रद्धा का मूल क्या है जिस संग से हमको कृष्ण के प्रति प्रवृत्ति हुई है भक्ति करने की उसे एक चीज होता कृष्ण सेवा की वासना जगा देते हैं साधु संत और कोई नहीं जगा सकता कृष्ण सेवा की वासना ही यह श्रद्धा का मूल है कृष्ण की सेवा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा जन्म जन्मांतर तुम्हारे सफल हो जाएंगे इस दृढ़ विश्वास का नाम है श्रद्धा होने का लक्षण क्या है भगवान के वचनों में गुरु के वचनों में और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा बहुत से लोग गीता को मानते हैं मान करके भी नहीं मानते हैं क्या कैसे नहीं मानते गीता तो पढ़ते हैं गीता के श्लोकों का उच्चारण काफी करते हैं किंतु कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो गीता को मानना नहीं हुआ हमारे पहले राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति ने
सर्वपल्ली राधाकृष्णन
राधा कृष्ण वो उनका कहना था बड़े भारी विश्व के दार्शनिक थे कृष्ण के अंदर में जो आत्मा थी वो तो भगवान है ब्रह्म है किंतु शरीर नहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान ये मान करके तब फिर गीता पढ़ो तब तो बस तभी कुछ चीज हो इसलिए बहुत से लोग हैं गीता भी पढ़ते हैं कोई आधा मानते हैं कोई भी प्रक्षिप्त मानते हैं कुछ और कुछ श्लोक को ठीक कोई गीता का कुछ मानते कोई भागवत मानते कोई वेद ही नहीं मानते ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं आपके शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं लोगों को पानी पिलाएंगे ट्रैफिक दिखलाएंगे और सब बतलाएंगे भगवान निराकार है ऐसा कहेंगे किंतु गीता भागवत इत्यादि में मैं परब्रह्म हूं हमारा रूप है ये सब नहीं था क्योंकि गीता मानने का कोई नहीं इसलिए श्रद्धा उसको कहते हैं जो शास्त्र के वचनों में गुरु के वचनों में कृष्ण के वचनों में गुरु भी ऐसा तैसा नहीं गुरु का भी लक्षण है, गुरु में यदि लक्षण है तो उसको गुरु मानो, नहीं तो मत मानो, संसार से विरक्त हो। शास्त्र का तात्पर्य जानने वाले हमारे संदेह को दूर कर दे और भगवान का सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब यदि लक्षण है तो ऐसे गुरु का बात है। ऐसे श्रद्धा होने से तब फिर भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ क्या? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। हम अभी भूल गए हैं हमारा स्वरूप क्या है। हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हमारा स्वरूप परम आनंदमय है। उसको भूल करके शरीर में आसक्त होकर के ये इसके सुख और दुख में हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। किसी ने हमारी स्त्री को एक थप्पड़ मारा, तुमको तो थप्पड़ नहीं लगा, थप्पड़ किसको लगा? तुम्हारी पत्नी। तो तुमको तुम क्यों बिलबिलाते हो? अपनी स्त्री से भी ज्यादा तुम दुखे क्यों? ये आसक्ति है। ऐसे ही संसार में हम आसक्त हो गए। आसक्ति चाहिए कृष्ण के चरणों में और आसक्त हम संसार, इसलिए हमको दुखी। स्वरूप भ्रम असत कृष्णा, स्वरूप भ्रम होने से ये हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, भगवान के दास हैं, सेवक हैं, भूल जाते हैं। तो असत कृष्णा, असत प्रकार की लालसाएं होती हैं। संसार का सुख चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संसार की पदगणना चाहिए और कुछ लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, स्वर्ग इत्यादि सुख चाहिए। असत कृष्णा हृदय दुर्बल, हृदय दुर्बल हो जाता है। क्या करें ना करें कोई विचार नहीं रहता, कभी क्रोध के द्वारा ही हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते और अंत में अपराध होना, भगवान के चरणों में अपराध। ये सब दूर होने पर उसकी भक्ति निष्ठावादी होती है। निष्ठा माने क्या? स्थिर हो जाता है साधु संग, पहले होगा साधु संग, किंतु उस समय समझता नहीं है, उसे सुकृति बनेगी, फिर दूसरा साधु संग होगा, उसमें दूसरे साधु संग में हरि के कथा को सुनने में रुचि होगी, भागवत इत्यादि सुनने में रुचि होगी, गीता सुनने में रुचि होगी, वैष्णव की सेवा में रुचि होगी। रुचि भी दो प्रकार की होती है, एक रुचि होती है निष्ठात, होती है बुद्धि पूर्विका, और रुचि बुद्धि पूर्विका नहीं, रुचि किसी चीज से जहां थोड़ी सी लालसा हुई तब रुचि होने पर हरिनाम करने में कष्ट नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, यह रुचि का लक्षण है। रुचि को भी दो प्रकार बतलाए गए, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षी। कहीं ठाकुर जी को सुंदर सजा दिया गया, सोने के अलंकार पहना दिए गए, मोर मुकुट इत्यादि धारण कर दिया गया, वस्त्र भी बड़े सुंदर चमकीले पहना तो अच्छे लगते हैं, तो वहां पर हजारों आदमी जाएंगे दर्शन के लिए, और वही ठाकुर जी मैले थोड़े से हो गए, कपड़े अच्छे नहीं है, कोई नहीं, कोई जाएगा। एक आदमी गान कर रहा है, खूब भक्ति है, रो भी रहा है, किंतु स्वर ठीक नहीं है, सुरीला तान नहीं है, और एक व्यक्ति सुरीले ग्रंथ से सुरीले जंत्रों पर वो गान करता है तो लाखों आदमी सुन जाए, और जिसका गला सुरीला नहीं है किंतु भक्ति खूब है तो भी उसकी कोई बात नहीं सुन। इसलिए वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा रहती है, ये कुछ कम है, और जब वस्तु की वैशिष्ट नहीं है तो भी हरि नाम सुना, महाप्रभु का और कृष्ण नाम सुने बस गदगद हो जाते। यही और बढ़ेगी तब फिर क्या होगा, तब आसक्ति होगी। आसक्ति जहां हो गई तहां का काम बहुत आगे बढ़ गया, अब पतन होने का संभावना कम रहेगा। आसक्ति किसको कहते हैं, आसक्ति भी दो प्रकार की है, एक भजन साधन के प्रति आसक्ति, हरिनाम 3 लाख हरिनाम करते हैं, 1 लाख हरिनाम करते हैं, वैष्णव के लिए जनपद करते हैं, साधु संग करते हैं, उसमें आसक्ति। और एक होता है इष्ट देव के प्रति आसक्ति, तो पहले साधन के प्रति आसक्ति होगी और उसके बाद में तब होगी, और उसके बाद में आसक्ति किसके प्रति, इष्ट कृष्ण के। ये आसक्ति हुई, आसक्ति होने पर हरिनाम नहीं करने पर मन खराब हो जाए, साधु संग नहीं होने पर मन खराब हो जाए, स्वाभाविक उसमें आसक्ति रहेगी। इसके बाद में आसक्ति के बाद में आएगा भाव, इसी का नाम है रति। इसी भाव के लिए मैंने बतलाया, क्या बतलाया,
शुद्ध सत्व विशेषण,
शुद्ध सत्व विशेषण। इसको थोड़ा समझिए, अशुद्ध सत्व ये जड़ जगत में जो कुछ देख रहे हैं, यह शरीर बांस तंबू जो कुछ, ये सब जड़ चीजें हैं, इसलिए जड़ सत्व इसको सत्व माने सत्ता। हमारा शरीर जो कुछ है, चेतन दिखलाई नहीं पड़ता, चेतन आंखों से चेतन दिखाई, इसलिए जड़ आंखों से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है जो इसी जगत में रह जाएगा, इसलिए इसको जड़ सत्व कहते हैं। एक होता है मिश्र सत्व, हम आत्मा शुद्ध सत्व हैं किंतु अभी शरीर के द्वारा बद्ध हो गए हैं, इसलिए हमें अभी अपना परिचय कुछ मालूम नहीं होता, भगवान को भी नहीं पता, इसलिए इसको बद्ध अवस्था को मिश्र सत्व कहते हैं। और जब आत्मा शुद्ध हो जाता है, शरीर से निकल करके मन से भी अतीत हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। और एक है विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व माने भगवान, और उनकी शक्ति से पर जगत में गोलोक वृंदावन में जितने भी शरीर हैं, जो कुछ सत्ता है वहां, सब कुछ विशुद्ध सत्ता। इसको और अच्छी तरह से थोड़ा सा जानने के लिए ये जरूरी है, शुद्ध सत्ता विशेष आत्मा सत चित आनंद तीन मिल करके भगवत्ता होती है, सत चित आनंद, सत से संधिनी, चित से संबीर और आनंद से हला दे, तीन। जब संबीर, संबीर माने भाव, भाव हमारे जितने भी भाव है उसके अंतर्गत श्रीमती राधिका जी के जो कृष्ण के प्रति भावनाएं हैं सेवा की, ये सब विशुद्ध सत्व, इसलिए संधिनी शक्ति के ऊपर, संधिनी सत्ता के ऊपर जब लादिनी और संबित माने भाव दोनों का सम्मिलित भाव प्रकट होता है, तो इसको विशुद्ध सत्व का क्या तात्पर्य, श्रीमती राधिका जी के जो भाव हैं कृष्ण सेवा, इसी का नाम विशुद्ध भक्त, यही विशुद्ध सत्व। हम जब उनका चिंतन करते हैं तो वहां से जैसे हमको कृष्ण की सेवा करने की लालसा है, तो कुछ भाव होता है। हम यदि सखाओं के जैसा बनना चाहें, कृष्ण की सेवा करना चाहें, तो सिद्धाम सुबल उत्तर उनका भाव। और सखियों के अनुगत होकर के उनकी सेवा करने की भावना होगी तो ललिता विशाखा इत्यादि रूपमंजरी इत्यादि उनके अनुगत होकर के चिंतन करें, तो उनके जो भाव हैं हमारे अंदर में जब संक्रमित होंगे तो उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले श्रद्धा से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव कृष्ण के प्रति किसी प्रकार से लग दिया जाए। जेने केन उपायेन कृष्णे मनोनिवेशय, किसी भी प्रकार से हो जैसे हो, यहां शक्ति शत्रु भाव से भी शिष्यपाल दंत वक्र इत्यादि ने शत्रु समझा, जरा संघ शत्रु कंस इत्यादि अभी उनको मुक्ति। और प्रेम के साथ में मनोनिवेश करेंगे, थोड़ा भी मनोनिवेश करके भगवान का नाम करेंगे, कलयुग में इससे बढ़कर क्या और कुछ नहीं। हरे राम हरे नाम, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते व नास्ते होते। जिनका निर्वाह के लिए जो कुछ कर रहे हैं करें, किंतु मांस मछली प्याज लहसुन गोश्त उनको छोड़ना चाहिए, किसी को भी कष्ट न दे। जिनका निर्वाह के लिए अपना बिजनेस व्यापार सब करें और भगवान का स्मरण करें, चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी। और यदि किसी एक्सपर्ट को गुरु बना करके यदि उसके अनुगत्य में परिणाम दे दिया तो बहुत जल्दी प्रक्रिया है। इसलिए एक ही साधु संघ के साथ में भगवान का नाम करें, आप लोगों का कल्याण होगा, यही का कर्तव्य मैं अपना बहुत कर। महामंत्र कोई कर Thank you.